पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहरदादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, आशा है कि आप सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
और आज भी हम श्रोताओं के कुछ पत्र और ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैं ईमेल, और ये है जशीम जैद। लिखते हैं, मुझे रेडियो तेहरान बहुत पसंद है। मुझे बंगाली और हिंदी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सुनता हूँ। मैं रेडियो तेहरान फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देने का अनुरोध कर रहा हूँ। मुझे लगता है उनका मतलब है व्हाट्सएप पे वो लाइव देना चाह रहे
नहीं,
हैं।
नहीं, वो ये सही पॉइंट है जिसकी तरफ इशारा किया है।
जी,
फेसबुक पर लाइव प्रसारण की बात कर रहे हैं।
जी,
फेसबुक पर लाइव प्रसारण फिलहाल हमारा नहीं है।
जी,
इसलिए कि उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए अभी नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर लाइव प्रसारण रहता है। अगर उस टाइम पर सुनें जो हमारी लाइव प्रसारण का टाइम है, भारत के यानी तेहरान के समय के अनुसार शाम 6 बजे और भारत के समय के अनुसार शाम 8 बजे जो समय है, उस समय पर हमारे कार्यक्रम लाइव हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं। फेसबुक लाइव के लिए अभी जो मैंने
समय
जैसा कि
लगेगा।
बताया, उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अभी कंप्लीट नहीं है।
जी, अगला ईमेल है मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, शिवेंदु पॉल का। लिखते हैं, मिताली लिसनर्स क्लब के मैं सदस्य हूँ, और भैया इन्होंने बंगाली हिंदी मिक्स करके बहुत सुंदर मेल भेजा है।
जी।
लिखते हैं, रेडियो तेहरान के कभी सभी कार्यकर्ता और श्रोता बंधु को मिताली लिसनर्स क्लब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी सेवा रेडियो तेहरान का एक नियमित श्रोता हूँ, और भैया आपको तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये बंगाली जो होते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही उनका उच्चारण होता है। और रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के कार्यक्रमों को 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहा हूँ। मेरे इलाके में बहुत सारे श्रोता आपके कार्यक्रम सुनते हैं। समाचार और सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ईरान और विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही मधुर भाषा का इस्तेमाल किया है हमारे इन श्रोता ने। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत है ख़ास तौर पर कार्यक्रम पत्र संसार में। ये भाषा दीदी, अगर आप ध्यान दें तो वाकई बड़ी मीठी ज़बान है जो इस तरह से, और भारत की शायद खूबसूरती भी यही है कि वहाँ बहुत विविधता है, और विविधता में एकता भी, और साथ साथ बड़ी सुंदरता भी, ये बड़ा आकर्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओ, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी एक खबर की। तो आइए देखते हैं कि दीदी ने आज के लिए क्या खबर चुनी है।
भैया, आज हम यज्द शहर की सैर कर रहे हैं।
जी,
मध्य ईरान में ऐतिहासिक शहर यज्द दुनिया का सबसे बड़ा कच्ची ईंटों का शहर है। कुछ साल पहले तक यज्द में प्राचीन स्मारकों को पुनर्स्थापित करने के लिए रॉक ईंटों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हम उस युग में लौट आए हैं जब धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी और उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक नेमतों से वंचित यज्द निवासियों को कुछ नया सोचना पड़ा, और पानी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने भूमिगत जल सेतु का आविष्कार किया, जिन्हें गनात नाम से जाना जाने लगा। उस आविष्कार ने यज्द के रेगिस्तानी शहर में पानी आपूर्ति होने लगी, और वहाँ के निवासियों के पास अब जमीन के साथ साथ पानी भी था। हालांकि अब यज्द का ऐतिहासिक शहर विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यज्द में लोगों ने सभी इमारतों, प्राचीरों और गढ़ों, उपासना स्थलों, सैन्य स्थलों और जल संरचनाओं जैसे कि कुंडों के निर्माण के लिए इसी पानी और जमीन का उपयोग किया है। यज्द में निर्मित पहली संरचना पूर्व इस्लाम युग की है, जब अधिकांश इमारतें कच्ची ईंटों से बनी थी। शुरुआत में धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों के आयाम इतने बड़े थे कि उन्हें लगा कि अगर बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया जाए तो वे कम समय में इमारतें खड़ी कर पाएंगे।
जी,
मिट्टी की ईंटें आमतौर पर बाहर बनाई जाती है ताकि वे धूप में सूख सकें। कच्ची ईंटों की सबसे बड़ी मात्रा का उपयोग क्वाला मैबुध और अबराबाद कैसल और यजदगढ़ जैसी संरचनाओं के निर्माण में किया गया था, और अब ऐतिहासिक स्मारकों को पुनर्स्थापित करने के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग अतीत की तरह से किया गया है।
दिलचस्प खबर
जी।
तो अब इस खबर के बाद श्रोताओं, बारी है आपके कमेंट्स की, जो आप हमारे खबरों पर या अन्य सामग्री जो वेबसाइट पे होती है उस पे जो लिखते हैं। तो दीदी, क्या कमेंट्स आपने चुने
जी
हैं?
अमेरिका ने फिर लगाए प्रतिबंध, ईरान ने कहा वॉशिंगटन में सरकार बदली रवैया नहीं। इस पर नीमा पारसियान लिखते हैं, बाइडन, ट्रंप, ओबामा, बुश, क्लिंटन, बुश, रीगन, कार्टर, निक्सन आदि और भविष्य के अमरीकी राष्ट्रपति उसके पिछले राष्ट्रपति के समान ही होंगे। अमरीकी राष्ट्रपति कोई और नहीं है, केवल बड़े बड़े व्यवसायी तानाशाही ही हैं।
ये बात बहुत तथ्यपूर्ण है, बहुत सच्चाई है इसमें कि अमरीकी नीतियाँ बदलती नहीं हैं। अमरीका में सरकारें बदल जाती हैं बेशक, लेकिन दुनिया को देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं अमेरिकी शासक, अमेरिकी राजनेता, वो एक है। वो दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, एक वो हैं जो कि वर्चस्ववादी देश हैं, और दूसरा भाग वो है जो इस वर्चस्ववाद का, इस विस्तारवाद का निशाना बनते हैं वो देश। तो इस तरह से दुनिया को बांट लेते हैं। इसके तहत फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि दुनिया के देशों के पास जो संसाधन है उसे अमेरिकी अपना माल समझते हैं, उसके बारे में फैसला करना अपना अधिकार समझते हैं। जैसे कि पश्चिमी एशिया में अगर तेल के भंडार मौजूद हैं तो उनको ये लगता है कि इस भंडार की नीतियों का निर्धारण उनके हिसाब से होना चाहिए, इनकी बिक्री उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, नीतियां हैं और सोच है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स।
सच्चाई की कड़वाहट से तिलमिलाए सऊदी अरब, बहरीन और अरब देश लेबनान से राजदूतों को वापस बुलाने की तैयारी। इस पर अफजल जैदी लिखते हैं, चिंता ना करें, वे अपने दूतावास खोलने के लिए अपने घुटनों पर भीख मांगते हुए आएंगे, जैसा कि इन अन्य अरब राज्यों ने सीरिया के साथ किया था। इराक को ही देखो, ये फिर से खून बह रहा है।
ये खबर भी हालिया दिनों चर्चा में रही दीदी, और इस पर बहुत टीका टिप्पणी भी बहुत हुई, इस पर कमेंट्स भी बहुत रहे हर सतह पर, कि लेबनान और सऊदी अरब के बीच में एक विवाद पैदा हुआ। और विवाद ये था कि बहुत ही सामान्य सी बात थी कि लेबनान के सूचना व प्रसारण मंत्री ने, जो कि दरअसल एक जाने माने पत्रकार भी हैं, करदाही, जोसेफ करदाही या जॉर्ज करदाही, और उन्होंने एक बात ये कही कि यमन में जो कुछ हो रहा है, तो यमन में सऊदी अरब जो हमला कर रहा है, यमनी उसका अपने बचाव में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया है। तो ये बात कही थी जो कि ज़मीनी सच्चाई सारी दुनिया जानती। इसी के बाद से ये विवाद बढ़ गया। अलबत्ता अब टीका इस पे समीक्षाएं आ रही हैं कि इस ये तो विवाद का ज़ाहरी रूप है, असल बात कुछ और है, और सऊदी अरब कई और मोर्चों पर नाकामी का मुँह देखने के बाद अब इस तरह के कदम उठा रहा है कि उसने दूतावास बंद करने की बात की है, राजदूत को वापस बुलाने और लेबनानी राजदूत को वापस भेजने की बात की है। तो ये एक नया विवाद है, देखना है कि कहाँ तक जाता है। और दीदी अब बारी है किसी श्रोता के विचार सुनने की, तो देखते हैं कि आपने किसका चयन किया है इस सप्ताह के
जी। कोलकाता से कलोल नाथ है और इन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही है, तो चलते हैं इनकी बात सुनते हैं।
A very good afternoon from Kolkata. I just wanted to share my thoughts about Radio Tehran Iran, which I have been listening for the last couple of years. Not on a very regular basis, but yes, ideally on weekends. The first thing I would like to say, what made me interested about this particular station is the rich cultural heritage of Iran. Iran has a very old history of friendship with our country, India. I belong to India and to a certain extent aware of the history of Iran, the cultural heritage, the rich diversity of the country, the richness of the historical architecture that Iran has with it. And it is a very nice experience when one listens to Radio Tehran, particularly in the Bangla and Hindi and also the English broadcast. One learns to have the feel of the country and the old flavor that India shares with Iran. And it has been many times proven that what we think in India about our politics, about our cultural heritage, it is astounding to find that Iran shares the same opinion and thoughts in its broadcasts. I wish all the success for this particular station of Radio Tehran Iran. I wish the country prospers in legacy, in history, in its rich cultural heritage, in economy and every possible field of science and technology. I have my sincere wishes for Radio Tehran as a station, as a broadcasting medium on shortwave, and let Radio Tehran keep on inspiring us, keep on entertaining us, keep on informing us for all the years to come. Thank you very much. This is Kollul Nath from India, an avid listener of Radio Tehran, Iran. Thank you so much.
जी दीदी, तो धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, चूँकि मुझे नहीं लगता कितना समय बचा होगा कि आप कोई कमेंट या कोई और चीज़ शामिल करें। बस हम अपने श्रोता का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे और श्रोता भी हम ये चाहेंगे कि अपने विचार ज़रूर हम तक भेजें और अपना वॉइस नोट भेजें, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह से कि कार्यक्रम पत्र संसार में दीदी उसको शामिल कर सकती हैं। तो दीदी, मेरे ख्याल से आखिर में श्रोताओं से आप अनुमति ले लीजिए, चाहे पता वगैरह बता दीजिए।
जी, हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir और हमारे वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और भैया, व्हाट्सएप संपर्क भी हम बता दें, संपर्क नंबर है 00989035065492।
तो श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार अपने समापन को पहुंचता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।